जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निकर गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्मिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की बेलगाम शाखा श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कृष्ण कथा श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के 48वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। इस अध्याय में तीन मुख्य विषय हैं। पहला, श्री कृष्ण द्वारा कुब्जा या त्रिवक्रा का उद्धार। दूसरा, श्री कृष्ण के अक्रूर जी के घर में पधारना। और तीसरा विषय है श्री कृष्ण का अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजना। तो कुब्जा उद्धार की चर्चा तो हम कर चुके हैं और ये भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर में आ पहुँचे, जैसे कि उन्होंने वचन दिया था जब वो पहले मथुरा आए थे। बड़ी अच्छी ढंग से, समुचित ढंग से अक्रूर जी ने श्री कृष्ण का स्वागत किया, उनकी आराधना की और फिर प्रार्थना की, स्तुति की भगवान की। और इस स्तुति के अंत में हम पहुंच चुके हैं और अक्रूर जी अंत में कहते हैं कि हे जनार्दन, हमारा अहो सौभाग्य है कि आप हमारे सामने दृश्य हैं अभी। वैसे जो प्रमुख देवता गण हैं और बड़े बड़े योगी ज्ञानी इत्यादि हैं, वो भी बड़े कठिनाई से इस सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए कृपया शीघ्र ही हमारे हृदय के अंदर जो मोह पाश है हमारे परिवार आदि के प्रति, उसे आप छिन्न कर दीजिए, काट दीजिए। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण का गुणगान अक्रूर जी ने किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से प्रार्थना, अक्रूर जी से बातें करना प्रारंभ किया। वैसे जिस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों का गुणगान करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार की एक प्रतियोगिता भक्त और भगवान में होती है, जो एक प्रेम की प्रतियोगिता है। इस साधारणतः दुनिया में जो स्पर्धाएं होती हैं उनमें अहंकार होता है, उनमें ईर्ष्या होती है, परंतु इस प्रतियोगिता में केवल प्रेम ही प्रेम होता है। तो अब हम 29वें अध्याय 29वें श्लोक में पहुंचे हैं, दशम स्कंध के इस 48वें अध्याय में। श्री भगवान उवाच, त्वं नो गुरुः पितृव्यास पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा वयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकंप्याः प्रजाहिवः। भगवान कहते हैं, त्वं, आप हे अक्रूर जी, नह, हमारे क्या हैं, गुरुः और पितृव्यस, पितृव्यः अर्थात हमारे आप चाचा हैं, तो हमारे आप गुरु हैं, हमारे आप चाचा हैं। चाचा जो होते हैं वो पिता तुल्य होते हैं। श्लघ्यो बंधुः च नित्यदा, वास्तव में आप हमारे प्रशंसा योग्य बंधु या मित्र भी हैं। सदैव आप हमारे शुभचिंतक हैं। तो नित्यदा वयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च, और सदैव आप हमारे रक्षक हैं और आप हमारे पोषण करने वाले हैं। हम आपके पुत्रों की तरह हैं और रक्षा के लिए, पोषण के लिए हम सदैव आपके ऊपर निर्भर हैं। नित्यदा वयम, हमेशा हम तो रक्षाः पोष्याश्च, आपके द्वारा हम सुरक्षा के योग्य हैं, पोषण के योग्य हैं, हम निर्भर हैं आपके ऊपर। अनुकंप्याः प्रजा ही वह, तो जिस प्रकार से प्रजा भी राजा के ऊपर निर्भर रहती है, बच्चे भी माता पिता के ऊपर, पालकों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनकी कृपा के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी आपके कृपा के ऊपर, आपके रक्षा के ऊपर, आपके पोषण के ऊपर निर्भर हैं। और स्तुति करते हैं अक्रूर जी की भव अगले श्लोक में, 30वें श्लोक में। भवद्विधा महाभागा निशेव्या अर्ह सत्तमाः श्रेयस्कामैर्निभिर्नित्यं देवः स्वार्थान साधवः। भवद्विधा महाभागाः, तो आप जैसे, भवत मतलब आप, विधा मतलब जैसे, तो आप जैसे महाभागाः, आप जैसे बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महान, निशेव्य अर्ह सप्तमाः। निशेव्य मतलब जो सेवा करने योग्य हैं, और अर्ह मतलब जो पूजा के योग्य हैं। तो किन के लिए, श्रेयस कामे ही। तो हम सब जानते हैं कि श्रेय और प्रेय ये दो शब्द होते हैं। प्रेय, प्रेयस अर्थात जो तत्कालीन हमें कुछ यहाँ सुख चाहिए संसार में, ये हमारे क्षणिक जो इच्छाएं होती हैं उनको प्रेयस कहते हैं, परंतु श्रेयस का अर्थ होता है जो हमारे दीर्घकालीन हित के लिए जो जो चीज़ें होती हैं वो श्रेयस होते हैं। तो जो लोग श्रेयस कामय ही होते हैं, जो अपने वास्तविक हित को चाहते हैं, दीर्घकालीन भलाई को चाहते हैं, तो उनके लिए आप सेवा के योग्य हैं, आप अर्चना या आप पूजा के योग्य हैं। तो हमेशा तो वैसे जो देवा देवाह स्वार्थ न साधवः, तो जो देवगण होते हैं वो सदैव अपने ही सुख के लिए, अपने हित के लिए चिंतित रहते हैं, परंतु न साधवः, परंतु आप जैसे जो महान भक्त हैं केवल स्वार्थी नहीं होते हैं, आप सबके भलाई के लिए आप सोचते हैं, आप सबके शुभ चिंतक होते हैं। तो देखिए, यद्यपि देवगण भी भगवान के भक्त हैं, परंतु उनमें से अधिकांश जो हैं वो स्वार्थी होते हैं, वो मिश्र भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त निस्वार्थ होते हैं, और भगवान कृष्ण इसको भलीभांति जानते हैं। साधव साधु भूषणाः, तो भगवान कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो साधुओं के गुणों से, सद्गुणों से सुशोभित होते हैं, वो आभूषित होते हैं ऐसे सद्गुणों से। हमारे वास्तविक जो आभूषण होते हैं वो ये सद्गुण होते हैं। हमारे शरीर को हम सजा सकते हैं भला अच्छे कपड़ों से, अच्छे आभूषणों से, अच्छे अंगराग आदि लगाकर, परंतु ये वास्तविक आभूषण नहीं है। वास्तविक आभूषण है सद्गुण, और भगवान के शुद्ध भक्त स्वाभाविक रूप से ऐसे सद्गुणों से सुशोभित सदैव रहते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ऐसे पवित्र स्थान अवश्य होते हैं। अमयानी तीर्थानि, अपमयानी अर्थात जो जल के जल रूपी जो तीर्थ होते हैं, जैसे जलाशय होते हैं ना, तरह तरह के कुंड होते हैं, तालाब सरोवर होते हैं, नदियां होती हैं, कभी कभी समुद्र भी एक पवित्र स्थान माना जाता है, एक तीर्थ स्थान होता है। जैसे पुरी का जो समुद्र है वो तीर्थ स्थान माना जाता है, हरिदास ठाकुर को वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर त्यागने के बाद स्नान करवाया था। तो ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान होते हैं। अब जो भगवान के शुद्ध भक्तों के संबंध में तीर्थ स्थान होते हैं उनका स्थान अलग होता है, जैसे हरिदास ठाकुर का। परंतु साधारण जो तीर्थ स्थान होते हैं, जो जलाशय आदि होते हैं, हाँ, उनके पास जाके हमारा उद्धार तो होता है, और जो देवताओं की उपासना हम करते हैं, देवताओं के मंदिरों में जाके हम पूजा अर्चा आदि सब करते हैं, इन सब की भी थोड़ा, इन सब से थोड़ा भला तो हो सकता है, परंतु ते पुनन्ति उरुकालेन, वो हमारा शुद्धिकरण करेंगे परंतु उरुकालेन, बहुत लंबे समय के बाद। दूसरी ओर दर्शनाद एव साधवः, परंतु आप जैसे साधुओं का दर्शन करने मात्र से ही तुरंत भला हो जाता है, उद्धार हो जाता है किसी व्यक्ति का। युधिष्ठिर महाराज भी इसी प्रकार से विदुर जी की स्तुति करते हैं श्रीमद् भागवत में, भवद्विधा भागवताः तीर्थभूताः स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता, कि भवद, कि आप हे विदुर जी, आप जैसे विधा भागवताः, जो भगवत से जुड़े हुए हैं वो हैं भागवत। तो जैसे श्रीमद् भागवत है, तो भागवत अर्थात जो भगवत, भगवत से जुड़े हुए हैं, तो श्रीमद् भागवत। तो जब केवल हम भागवत कहते हैं, इससे स्पष्ट नहीं होता है कि हम व्यक्ति भागवत की बात कर रहे हैं या पुस्तक भागवत की बात कर रहे हैं। परंतु जब हम भागवतम कहते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये पुस्तक भागवत है जो भगवत या भगवान कृष्ण से संबंधित है। और हम केवल यदि भागवत है कहते हैं तो ये व्यक्ति भागवत का संबोधन होता है। तो भवत विधा भागवताः, कि आप जैसे जो भक्त होते हैं, तीर्थ भूताः स्वयं विभो, हे विभो आप स्वयं तीर्थ स्थान हैं, आप जैसे भक्त तीर्थ भूताः, आप स्वयं तीर्थ स्थान बन जाते हैं। यहां तक कि तीर्थी कुर्वन्ती तीर्थानी, आप तीर्थ स्थानों को वास्तव में तीर्थ स्थान बनाते हैं, क्योंकि जो अच्छा है, देखिए यहां पर श्लोक आ गया, तीर्थी कुर्वन्ती तीर्थानी स्वांतः स्थेन गदाभृता। क्यों? क्योंकि आपके हृदय स्व अंतः स्थेन, क्योंकि आपके हृदय में कौन निवास कर रहे हैं? गदाभृता, जो भगवान विष्णु हैं, गदाधारी भगवान विष्णु या कृष्ण निवास करते हैं, और उनका साक्षात्कार भी आपको हो चुका है, इसलिए आप स्वयं तीर्थ स्थान हैं और आप जगह जगह तीर्थ स्थानों को वास्तव में तीर्थ स्थान बनाते हैं। जिस स्थान में आप जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है, इसलिए आपके दर्शन मात्र से, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब अक्रूर जी को कह रहे हैं, दर्शनाद एव साधवः। इस प्रकार से भगवान स्तुति करते हैं अक्रूर जी की। तो इस श्लोक के साथ इस अध्याय का दूसरा भाग समाप्त होता है। और अब यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर में ही हैं, फिर भी इस अध्याय का तीसरा भाग प्रारंभ होता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है कि अब श्री कृष्ण अक्रूर जी को आदेश देने वाले हैं कि वो हस्तिनापुर चले जाएं। किस कारण से, ये इस बात का भी स्पष्टीकरण होगा। तो इस 32वें श्लोक में भगवान ये आदेश देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस 32वें श्लोक को। सभवान सुहृदां वहिनः श्रेयान श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पांडवानां गच्छस्वत्वं गजाह्वयम्। भवान स भवान सुहृदं वहिनः श्रेयान। तो सुहृद शब्द तो हम जानते हैं, जो हितैषी होते हैं, वास्तविक जो शुभचिंतक होते हैं उनको सुहृद कहते हैं। भवान सुहृदाम वै नह, नह मतलब हमारे, भवान मतलब आप, तो आप हमारे शुभचिंतक हैं। वैसे शुभचिंतक तो बहुत हो सकते हैं ना, कई हो सकते हैं, लेकिन आप शुभ चिंतकों में से सबसे श्रेष्ठ हैं, श्रेयान। स भवान सुहृदाम वैनः श्रेयान, आप सबसे ऊंचे सबसे श्रेष्ठ शुभ चिंतक हमारे हैं। और इसलिए आपसे मैं ये निवेदन करता हूं कि आप क्या कीजिए, गच्छस्वत्वम गजाह्वयम्। गच्छस्वतम कि आप जाइए, कहाँ जाइए? गज अहवयम, वो स्थान, उस स्थान में जाइए जो कि गज या हाथियों के पीछे जिसका नाम रखा गया है, जिसको गजपुरम कहते हैं, कुंजरपुरम कहते हैं या हस्तिनापुर कहते हैं। तो आप हस्तिनापुर में जाइए। तो हस्तिनापुर में क्यों जाएं आप? क्योंकि पांडवानाम, वहां पांडव निवास करते हैं, तो जिज्ञासा अर्थम, उनके बारे में जरा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और क्योंकि क्यों ऐसे जिज्ञासा प्राप्त करनी चाहिए? श्रेयस चिकीर्षया, उनके हित के बारे में कुछ पूछताछ कीजिए जाकर, क्योंकि आप जिस तरह से हमारे हितैषी हैं वैसे आप पांडवों के भी हितैषी हैं, तो कृपया उनके हालचाल के बारे में पूछने के लिए आप वहां पर जाइए, हस्तिनापुर में आप जाइए। हस्तिनापुर ये तो कौरवों का निवास स्थान था, तो हस्तिनापुर का अर्थ हस्तिन अर्थात हस्ति या हाथी, और पुर अर्थात शहर। तो हस्तिनापुर बड़े बड़े हाथियों की नगरी थी उस समय, उस काल में। आप तो जानते हैं कि युद्ध के समय बड़े बड़े हाथियों का प्रयोग भी होता था। घोड़े तो होते थे, हाथियां भी होती थी। तो बड़े बड़े हाथी वहां भी हुए होंगे हस्तिनापुर में, इसलिए प्राचीन काल से उस शहर का नाम लग गया हस्तिनापुर या गजपुरम या कुंजरपुरम। वास्तव में इस नगरी का इतिहास बहुत पुराना है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भी हम देखते हैं कि हस्तिनापुर शहर का उल्लेख है। जब वशिष्ठ मुनि अपने दूतों को भेजते हैं भरत को वापस बुलवाने के लिए, क्यों जब श्री राम चले जाते हैं वनवास में तो वहाँ बुलाना होता है, क्योंकि दशरथ महाराज भी अपने प्राण को त्यागते हैं। तो ये सारे दूत जब चले जाते हैं तो वाल्मीकि मुनि ऐसे वर्णन करते हैं कि वो हस्तिनापुर पर पहुंचे और उन्होंने गंगा पार वहां पर कर लिया। तो ये हम समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन है ये स्थान। आजकल मेरठ जिले में आता है, उत्तर प्रदेश में। और महाभारत और पुराणों में भी ये ऐसे बताया गया है कि ये महाराज भरत की राजधानी थी। वैसे तीन प्रसिद्ध भरत हैं, भरत राजा हैं वैदिक इतिहास में। एक हैं ऋषभदेव के पुत्र भरत, दूसरे हैं श्री रामचंद्र के अनुज छोटे भाई भरत, और तीसरे हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। तो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत दुष्यंत महाराज के बाद, या भागवत में उनको दुष्मंत भी कहते हैं, तो उनके बाद वो राजगद्दी पर बैठे। तो उनकी वो राजधानी थी। तो बहुत पुरानी पौराणिक कथाएं हैं ये। और आगे चल के फिर ये कौरवों की राजधानी बन गई। जो 100 कौरव थे उनका जन्म भी यहाँ पे हस्तिनापुर में ही हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अक्रूर जी से कह रहे हैं कि पांडवों के बारे में जिज्ञासा करने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए, ये देखने के लिए कि वास्तव में वो ठीक ठाक हैं या नहीं, तो कृपया हे अक्रूर जी आप हस्तिनापुर जाइए। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण आदेश देते हैं और फिर आगे बताते हैं कि वो क्यों ऐसे चाहते हैं, क्यों ऐसे वो जिज्ञासा करना चाहते थे, पूछताछ करना चाहते थे पांडवों के बारे में। कुछ तो उन्होंने सुना होगा ना, इसलिए तो उन्होंने अक्रूर जी को भेजा जांच करने के लिए कि जो उन्होंने सुनी बातें हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो क्या सुना था उन्होंने? तो आइए 33वें अध्याय में हम पढ़ लेते हैं। पितर्युपरते बालाः सहमात्रासु दुःखिताः आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्त इव शुश्रुम। पितरी मतलब पिता, उनके पिता, पांडवों के पिता। उपरते बालाः, जब ये बाला, ये बालक हैं पांडव, जब उनके पिता का निधन हो गया, सह मात्रा सुदुखिता, तो उनके माता के साथ जो कि बहुत दुखी थी, सुदुखिताह, दुखिताह मतलब जो बहुत दुखी थी, और सुदुखिता मतलब बहुत ज्यादा दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि उनके पति का निधन हो गया और उनके पास अपने 3 बच्चे थे, साथ साथ उनके जो और पांडु जी की दूसरी पत्नी माद्री, वो भी अभी उनका भी देहांत हो गया था, तो उनके 2 पुत्र थे, तो 5 बालकों के साथ कुंती महारानी अकेली रह गई। तो अपने पति के निधन से तो बहुत दुख हुआ ही निश्चित, साथ साथ ये भी विचार आया कि 5 बालकों को मुझे अकेले अभी इनका पालन करना होगा, आगे चल के इनका भविष्य कैसे होगा, तो बहुत दुखी थी। तो फिर आनीताह तो लाए गए कहाँ पे? स्वपुरम राज्ञा। तो राजा ने अर्थात राजा धृतराष्ट्र ने उनको हस्तिनापुर में ले आए, वो वसंत इति सुषुमा, और वसंत वहाँ पे निवास कर रहे हैं ये बालक पांडव। इति सुषुमा, मैंने सुना है, ये सुषुमा शब्द हम बार बार सुनते हैं, इति सुषुमा धीराणाम ये नस्तत्व चक्षिरे, हाँ ईशोपनिषद में, तो ऐसे हमने सुना है, धीरस्तत्व चक्षिरे, धीर पुरुषों से जो बड़े बड़े साधु हुए हैं उनके उनके मुखारविंद से हमने ये सुना है। तो जो अधिकृत साधुओं से बातें सुनी जाती हैं उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो बातें वो वचने हमारे हित के लिए होती हैं। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण कहते हैं इति सुषुमा, मैंने सुना है कि ये जो पांडव हैं, ये जो बालक हैं, वो हस्तिनापुर निवास करते हैं। वो हस्तिनापुर में पहुँचे कैसे? पहले तो वो वन में निवास कर रहे थे, परंतु उनके पिता पांडु का जब निधन हो गया तो उनकी माता जो बहुत दुखी थी अपने 5 बच्चों को वो ले आईं हस्तिनापुर। वहाँ राजा धृतराष्ट्र ने उनको आश्रय दिया। वास्तव में हुआ ये था कि जब पांडु और माद्री का निधन हुआ तो कुंती महारानी अकेली पड़ गई, परंतु वन में बहुत सारे ऋषि मुनिगण भी रहा करते थे, तरह तरह के वन होते थे वैदिक सभ्यता में। थोड़े वन ऐसे होते थे जिनको तपोवन कहते थे, जो केवल तपस्या के लिए हुआ करते थे, तो साधु लोग वहाँ पर जाके तपस्या करते थे, तो वहाँ कोई जाके उनको विचलित नहीं करता था। गलती से कोई चले जाते थे तो वो दंडित हो जाते थे, उनको श्राप मिल जाता था, कोई परेशानी हो जाती थी। वहाँ एक शांति का वातावरण हुआ करता था, वहाँ के जंगली जानवर भी उन साधुओं के तपस्या के प्रभाव से शांत रहते थे, सौम्य रहते थे, और ऐसे तरह तरह के अन्य वन हुआ करते थे। ऐसे वन थे जिनका जिनमें से फल फूल आदि और अपनी औषधियाँ वनस्पति आदि गांव के लोग भी प्राप्त किया करते थे। तो इस तरह से तरह तरह के वनों में से ऐसे एक तपोवन में पांडु माद्री कुंती रहा करते थे। तो वहाँ पे ऋषि मुनि भी बहुत सारे थे। तो जब पांडु और माद्री का निधन हुआ तो सारे ऋषि मुनियों ने विचार विमर्श किया परस्पर आपस में, और उन्होंने निर्णय लिया कि अब इन 5 बालकों के भविष्य के लिए ये उचित है कि हम उनको हस्तिनापुर पहुंचा दें, ताकि वो उनके चाचा धृतराष्ट्र के संरक्षण में रहें, वहाँ उनका पालन पोषण हो जाए, जैसे एक राजकुमार जैसे राजकुमारों के लिए उचित है। तो फिर ये सारे ऋषि मुनि जो हैं वो कुंती महारानी को और इन 5 बालकों को धृतराष्ट्र के दरबार में ले गए। वहाँ पर दरबार में कई लोग थे जिनको बड़ा आनंद हुआ इन बच्चों को देखकर, कई लोगों को आनंद नहीं हुआ, उनको संशय भी हुआ, अरे ये कैसे है, जब वो वनवास में गए हैं तो उनको बच्चे कैसे हो गए, ये कौन से बच्चे हैं, किस तरह से, तो इस तरह के संशय आदि होने लगे। परंतु जो ऋषि ऋषिगण कुंती महारानी और पांडवों के साथ में आए थे, उन्होंने भरी सभा में घोषणा की कि नहीं, ये पांचों के पांच पांडु के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से फिर वहां पर वो रहने लगे। भीष्मदेव, विदुर बहुत ही प्रसन्न हुए पांडवों को देखकर, बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वागत किया उनका। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न हुए वास्तव में। वैसे धृतराष्ट्र बुरे व्यक्ति नहीं थे, परंतु बुरे संग से जो है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। तो खैर, उन्होंने भी स्वागत किया और यहां तक कि आगे उन्होंने युवराज कहके युधिष्ठिर को घोषित किया। तो खैर, फिर वहां पर वो रहने लगे। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते, मैंने सुना है कि पांडव वहां पर रह रहे हैं। जब इति सुश्रुमा कह रहे हैं श्री कृष्ण, सो इससे ये प्रश्न उठता है कि क्या कृष्ण कभी पांडवों से इसके पहले मिले थे कि नहीं मिले थे। वैसे तो पांडव ये श्री कृष्ण के पार्षद हैं, तो नित्य लीला में वो तो मिलते ही हैं, परंतु जब अब ये भौम लीला कर रहे हैं, तो इस भौम लीला में, प्रकट लीला में क्या वो मिले थे इससे पहले? इससे पता चलता है कि शायद नहीं मिले थे, क्योंकि वो कह रहे हैं इति सुश्रुमा, मैंने सुना था। यदि पहले वो मिल चुके होते पांडवों से, तो वो कहते मैं जानता हूं, मैं मिल चुका हूं उनको। तो अब तक मिले नहीं थे, केवल उनके उनके बारे में समाचार उन्होंने प्राप्त किया था, उनको पता था, उन्होंने सुना था इति सुश्रुमा कि पांडव कुंती महारानी के जो पुत्र हैं वो हस्तिनापुर में रह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का मिलन पांडवों से पहली बार कब हुआ? वैसे कम से कम महाभारत में तो वर्णन इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण का मिलन पांडवों के साथ पहली बार द्रौपदी के स्वयंवर के समय हुआ। इसके पहले ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि श्री कृष्ण पांडवों से मिले थे, परंतु इतना अवश्य प्रमाणित है कि श्री कृष्ण पांडवों के बारे में जानते थे और पांडव भी श्री कृष्ण के बारे में जानते थे। एक दूसरे के बारे में उन्होंने सुना था, समाचार पाया था कि हस्तिनापुर में श्री पांडव हैं, और कुंती महारानी जानती थी कि श्री कृष्ण वृंदावन में से अभी मथुरा चले गए, वो जानती थी। तो और ये श्लोक जो है, ये अध्याय जो है, और इसके बाद वाले अध्यायों में भी ये प्रमाण है कि द्रौपदी के स्वयंवर के पहले भी श्री कृष्ण को ज्ञात था कि पांडव और कुंती देवी वो हस्तिनापुर में निवास कर रहे हैं। तो जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उस समय श्री कृष्ण की आयु लगभग 20 साल की थी। और जब श्री कृष्ण अक्रूर जी को अब यहां भेज रहे हैं हस्तिनापुर, तो इस समय श्री कृष्ण की आयु लगभग 13-14 के करीब हुई होगी। आपको याद होगा कि लगभग 11 साल या उससे थोड़े कम की आयु में श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए थे, और थोड़ा समय वहां बिताकर फिर उन्होंने उद्धव जी को मथुरा भेजा था, वृंदावन भेजा था। उद्धव जी 7 महीने तक रह गए वहां पर, फिर लौट के आए, और उसके बाद फिर श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को ये आदेश दिया वहां जाने के लिए। तो ये पहली बार हम सुन रहे हैं, वैसे तो प्रथम स्कंद आदि में है, लेकिन वो बाद की लीलाओं का वर्णन पहले किए गए हैं। लेकिन यदि क्रम काल क्रम से देखा जाए, तो श्री कृष्ण लीला में ये पहली बार श्री कृष्ण पांडवों का उल्लेख कर रहे हैं। तो उनको पता है कि पांडव वहां पर हैं। और इसके बाद फिर 57वें अध्याय में ये बताया जाता है कि कृष्ण और बलराम द्वारका से हस्तिनापुर जाते हैं। 97वें अध्याय तक, इस दशम स्कंद के 97वें अध्याय तक श्री कृष्ण द्वारका पहुंच चुके हैं। मथुरा लीला समाप्त हो चुकी, प्रकट लीला, और श्री कृष्ण द्वारका पहुंच गए। जब वो द्वारका में थे तो उन्हें खबर मिली कि पांडवों का निधन हो गया, लाक्षा ग्रह में एक भीषण आग लग गया और उस आग में वो सारे के सारे मर गए, ऐसे उन्होंने सुना। तो कृष्ण और बलराम दोनों अंतिम क्रियाओं के लिए फिर आ गए हस्तिनापुर द्वारका से। परंतु उस समय उन्होंने यद्यपि सबको सबसे मिले वो हस्तिनापुर में, परंतु वास्तव में पांडवों ने अपना देह त्यागा नहीं था। वो कथा भी आप सबको याद है कि चुपके से वो एक नीचे से सुरंग बनाकर निकल गए थे। विदुर जी ने व्यवस्था की थी उनके वहां से निकल जाने की, और जैसे ही आग लग गई उस लाक्षा गृह में, तो कुंती महारानी के साथ 5 पांडव उस सुरंग में से निकल गए और दूर पहुंच गए। बाद में आगे चल के भीम ने हिडिंबी राक्षस के साथ विवाह कर लिया, और उसके बाद में जाके फिर उसमें स्वयंवर में आ पहुंचे द्रौपदी देवी के। तो उस समय पहली बार श्री कृष्ण ने पांडवों को देखा और वो पहचान गए पांडवों को दूर से, यद्यपि उन्होंने पहले उनको देखा नहीं था। तो क्रम क्या है, जहाँ तक श्रीमद् भागवत और महाभारत को हम साथ में यदि रखें, तो पहली बार श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं पांडवों के बारे में जब उनकी आयु लगभग 13 से 14 की होती है। लगभग पांडवों की आयु भी लगभग उतनी ही थी, और इस समय वो अक्रूजी को भेज रहे हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे 97वें अध्याय में कृष्ण बलराम हस्तिनापुर जाते हैं, परंतु पांडवों से मिलते नहीं हैं। और उसके बाद में फिर जब स्वयंवर का समय आता है तो फिर वो पांडवों को प्रत्यक्ष देखते हैं। ठीक है, तो ये क्रम है। तो यहाँ पर अक्रूर जी को श्री कृष्ण कहते हैं कि कृपया आप जाइए हस्तिनापुर और पांडवों के बारे में पूछताछ कीजिए। वैसे व्यासदेव जी स्वयं कहते हैं कि महाभारत में उन्होंने 7 विषयों का वर्णन किया है। उनमें से पहला विषय है वासुदेवस्य माहात्म्यम, वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण की महिमा का गान। तो श्री कृष्ण ही महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चरित्र उनका है महाभारत में। तो इस प्रकार से अभी आगे 34वें श्लोक में श्री कृष्ण अक्रूर जी से क्या कहते हैं हम जरा पढ़ लेते हैं। तेषु राजाम्बिका पुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधीः समो नावर्तते नूनं दुष्पुत्र वशगोन्धद्रिक्। तेषु राजा अंबिका पुत्रः, धृतराष्ट्र अंबिका के पुत्र थे ना, पिताजी थे व्यासदेव। वैसे विचित्र वीर के पुत्र मानते हैं, परंतु विचित्र वीर नहीं कर पाए, उनका निधन हो गया, इसलिए व्यासदेव जी आए और अंबिका के द्वारा फिर धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, इसलिए राजा अंबिका पुत्र है। तो श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं कि अंबिका पुत्र जो धृतराष्ट्र हैं, भ्रातृ पुत्रेषु दीनधीः, दीनधीः अर्थात जिनका जिनकी जो बुद्धि है ना, जिनकी चेतना है, वो बड़ी दुष्ट है, या ऐसे कह सकते हैं वो विकृत है, वो बन चुके, वैसे धृतराष्ट्र थे नहीं वैसे, परंतु बन चुके। कैसे बन चुके? अंतिम अंत में देखिए श्लोक के, दुष्पुत्र वश गोंधधृक। अंधधृक पहले ही थे वो, अर्थात वो अंधे थे, परंतु दुष्पुत्र, उनके जो दुष्ट पुत्र थे वशगह, उनके प्रभाव में आके, उनसे प्रभावित होके ये दीन दी ही बन गए। उनके उनका चित्त भी विकृत हो गया, और उसके कारण उन्होंने क्या किया, भ्रातृपुत्रेषु, उनके जो भाई के पुत्र थे उनके प्रति, पुत्रेषु समो न वर्तते नूनम, समह न वर्तते, उनके प्रति उन्होंने समान भाव, सम भाव नहीं रखा, उनसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो श्री कृष्ण जान गए थे, उन तक समाचार पहुंच गया था कि धृतराष्ट्र पक्षपात कर रहे हैं, अपने दुष्ट पुत्रों के प्रभाव में आके अभी अन्याय कर रहे हैं पांडवों के प्रति, तो ये पता था श्री कृष्ण को। फिर आगे कहते हैं अक्रूर जी, 35वें श्लोक में श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं, गच्छ जानी ही तद्वृत्तम अधुना साध्व साधुवा विज्ञाय तद विधास्यामो यथाशम सुहृदं भवेत सुहृदां भवेत। गच्छ, तो जाइए, जानी ही, और जान लीजिए, क्या प्राप्त कर लीजिए, तत् वृत्तम, तत् मतलब उनके, किनके, धृतराष्ट्र के, वृत्तम अर्थात कार्य, तो जाइए और वहां जाके जान लीजिए कि धृतराष्ट्र के कार्य किस प्रकार के हैं। गच्छ जानी ही तद्वृत्तम, अधुना साधु असाधु वा, कि उनके जो वृत्त हैं, उनके जो कार्य हैं, वो साधु हैं या असाधु हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इस समय, अधुना इस समय धृतराष्ट्र किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं पांडवों के प्रति, अच्छा बर्ताव कर रहे हैं या बुरा बर्ताव कर रहे हैं, वहां जाके आप जान लीजिए, और फिर जानकर विज्ञाय, तो क्या करना, विज्ञाय तद विधास्यामः, फिर जब हम ये जान लेंगे, कृष्ण कहते हैं जब आपके द्वारा हमें यह खबर मिल जाएगी, तो उस समय हम निर्णय लेंगे। क्या निर्णय लेंगे, यथाशम सुहृदाम भवेत, फिर हम हमारे प्रिय जो सुहृदाम हैं, हमारे जो प्रिय भाई हैं पांडव, तो उनके भलाई के लिए शम हम कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे, विधास्यामः। तो हे अक्रूर जी, आप जाकर खबर पाके फिर आके मुझे बतलाइए कि धृतराष्ट्र किस प्रकार से पांडवों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, यदि अन्याय हो रहा है पांडवों के प्रति, तो फिर हम व्यवस्था करेंगे वहां जाकर, पांडवों की रक्षा के लिए, पांडवों की भलाई के लिए कोई व्यवस्था हम अवश्य कर लेंगे। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण अब संकेत दे रहे हैं मथुरा में रहते हुए भी, कि अब उनका उद्देश्य आगे चल के वृंदावन के बाहर भी दुष्टों को विनाश करना है, आगे चल के कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है, और वो वृंदावन से तो बाहर आ ही गए, अब मथुरा भी छोड़ के उन्हें जाना होगा द्वारका, और द्वारका से भी उन्हें जगह जगह जाना होगा दुष्टों का विनाश करने हेतु। तो एक संकेत दे रहे हैं उनके भविष्य के कार्यों के लिए। कि मैं व्यवस्था करूंगा हमारे पांडव भाइयों को प्रिय पांडवों की रक्षा करने के लिए। धृतराष्ट्र ये नाम है उनका, धृतराष्ट्र शब्द धृतराष्ट्र इसका अर्थ है जो राष्ट्र या राज्य को धारण करते हैं, जो रक्षा करते हैं। परंतु देखिए नाम तो धृतराष्ट्र है जो सारे राज्य को संभालते हैं, परंतु अपने प्रिय भाई के पुत्रों को नहीं संभाल पाए ठीक से, ये ठीक नहीं किया उन्होंने। कुंती महारानी भी तो, कुंती महारानी और कुंती महारानी को तो कितना दुख हुआ होगा अपने पुत्रों के साथ ऐसा जब उन्होंने देखा तो। वैसे कृष्ण के ये कृष्ण के लिए मतलब पांडवों के कृष्ण ममेरे भाई लगते हैं, क्योंकि पांडवों की माता थी कुंती, कुंती के भाई थे वसुदेव और वसुदेव के पुत्र थे श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे। कुंती का जन्म वास्तव में हुआ था शूरसेन की वो पुत्री थी, उनका नाम था प्रिथा, परंतु कुंती भोज राजा उनको कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने प्रिथा को दत्तक लिया और फिर प्रिथा का नाम बन गया कुंती। तो इस तरह से कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई हैं, और ये एक बहुत उनकी माँ पांडवों की माँ के ओर से उनका कृष्ण के साथ ये संबंध था। ठीक है, फिर अंत में ये इस अध्याय का अंत होता है, अंतिम श्लोक 36वां श्लोक इस 48वें अध्याय का, और इसमें शुकदेव गोस्वामी कहते हैं इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान हरिरीश्वरः संकर्षण उद्धव्याभ्याम वै ततः स्व भवनम ययौ इति अक्रूरं समादिश्य। इस प्रकार से अक्रूर को आदेश देने के बाद समादिश्य अर्थात संपूर्ण आदेश जब दिया, सम्यक आदेश्य पूरी तरह से आदेश देने के बाद भगवान हरि ही ईश्वर जो श्री कृष्ण भगवान हैं, हरि हैं, ईश्वर हैं, उन्होंने क्या किया ततः स्वभवनम ययो तो वो अपने भवन में चले गए। परंतु अकेले गए नहीं, किनके साथ गए, संकर्षण उद्धव उद्धवाभ्याम संकर्षण और उद्धव के साथ अपने निवास स्थान में वो चले गए। तो इस प्रकार से अक्रूर जी को श्री कृष्ण ने आदेश दिया, बहुत महत्वपूर्ण आदेश था। अब प्रारंभ होता है 49वां अध्याय जिसका शीर्षक है अक्रूर जी हस्तिनापुर में। तो इस अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए, वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र अन्याय कर रहे हैं पांडवों के प्रति, और फिर कई महीनों तक वहाँ पे रहने के बाद वो लौट आते हैं मथुरा और श्री कृष्ण को समाचार देते हैं। तो आइए इस अध्याय के पहले दो श्लोक हम देख लेते हैं, श्लोकों की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक ऐसे हम वर्णन करेंगे। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं स गत्वा हस्तिनापुरम पौरवेंद्रो पौरवेंद्र यशोंकितम। स गत्वा तो वो चले गए, कहाँ चले गए हस्तिनापुरम, तो हस्तिनापुर का वर्णन हो रहा है पौरवेंद्र यशः अंकितम। तो हस्तिनापुर की विशेषता क्या है कि ये शहर जो है अंकित है, आभूषित है यश से। किनके यश से? पौरवेंद्र जो पूर्व वंश के राजा थे उनके यश से, उनकी महिमा से मंडित या अलंकृत या सुशोभित है ये हस्तिनापुर। जैसे मैंने पहले बताया हस्तिनापुर का इतिहास बहुत प्राचीन है और पूर्व वंश के राजाओं ने राज्य किया था। अब थोड़ा इतिहास बताएं आपको संक्षेप में। दो क्षत्रिय वंश होते हैं ब्रह्मांड में, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में आए श्री रामचंद्र और चंद्रवंश में आए श्री कृष्ण और पांडव और बहुत बड़े बड़े राजा भी आए। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था अत्रि। अत्रि के एक पुत्र थे सोम। सोम के पुत्र थे बुध। बुद्ध ने बुध बुद्धा बुद्ध वो अलग है, वो भगवान के अवतार हुए। बुध बुध के पुत्र हुए पुरुरव, ये भी बहुत प्रसिद्ध राजा हैं। उनके पुत्र थे आयु। उनके पुत्र नहुष जो इंद्र बने थे एक बार, फिर उनको श्राप मिला था, फिर वो सर्प बन गए। फिर उनके पुत्र थे ययाति। ययाति का वर्णन काफी विस्तार में श्रीमद् भागवत में मिलता है हमें। ययाति के कई पुत्र थे, उनमें से दो महत्वपूर्ण पुत्र हैं यदु और पुरु। तो यदु के वंश में आए श्री कृष्ण और पुरु के वंश में आए पांडव। तो इस प्रकार से ययाति के द्वारा अपने पिता के तरफ से पांडवों का श्री कृष्ण से संबंध भी है। इसके पहले हमने देखा था कि कैसे पांडवों के माता की ओर से उनका श्री कृष्ण के साथ संबंध गहरा है, निकट का है। और साथ साथ उनके पिता के पूर्वजों के द्वारा राजा ययाति से पुरु और यदु दोनों भाई थे। तो पुरु वंश में आए पांडव और यदु वंश में आए कृष्ण। इस प्रकार से पिता के ओर से भी उनका संबंध हुआ। तो पुरु के वंश में आए दुष्यंत अनेक राजाओं के बाद, सारे राजाओं का नाम नहीं बोल रहा हूं। तो फिर दुष्यंत के पुत्र थे भरत, जिनका उल्लेख मैंने थोड़ी देर पहले किया था। कई पीढ़ियों बाद में आए प्रसिद्ध राजा रंतिदेव। रंतिदेव का उल्लेख भी भागवत में आता है। और कई पीढ़ियों बाद आए कुरु, राजा कुरु, जिनके बाद कुरुक्षेत्र नाम आता है, जिनके बाद दुर्योधन और उनके भाइयों को कौरव नाम दिया जाता है। वास्तव में पांडव भी कौरव ही हैं क्योंकि वो भी कुरुवंशी हैं, परंतु दोनों में भेद करने के लिए दुर्योधन और उनके भाइयों को कौरव कहा जाता है और जो युधिष्ठिर और उनके भाइयों को पांडु के पुत्र यानी पांडव कहा जाता है। फिर कुरु वंश में आए अनेक पीढ़ियों बाद राजा शांतनु, उनसे आए विचित्र वीर्य और फिर आए धृतराष्ट्र और पांडु। तो पांडु के पुत्र हुए पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र हुए कौरव। तो इसलिए यहां पर पौरवेंद्र यशोंकितम कि हस्तिनापुर में पुरु वंश के राजाओं की महिमा से मंडित ये शहर है हस्तिनापुर। तो स गत्वा हस्तिनापुरम पौरवेंद्र यशोंकितम। तो अक्रूर जी उस हस्तिनापुर में गए जो पुरुवंशी राजाओं की महिमा से मंडित था। और वहां जाकर उन्होंने दर्शन किया या मिले, वो किन से मिले? धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बहलीक, सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडव इत्यादि, इन सब से अक्रूर जी मिले। और आगे चल के सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अक्रूर जी जो कि गांधिनी के पुत्र हैं, उनकी माता थी जिनका नाम था गांधिनी, काशीराज की पुत्री थी, और अक्रूर जी के पिता का नाम था अश्वफलका। तो उन्होंने समुचित ढंग से सबको अभिनंदन किया, जो बड़े थे, जो छोटे थे, जो समकालीन थे, सबके साथ अलग अलग व्यवहार होता है, तो जैसा उपयुक्त था, जैसा उचित था, वैसा उन्होंने सबके साथ बर्ताव किया। और उन्होंने फिर उनके भलाई के बारे में पूछा और उनके रिश्तेदारों के परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ जिज्ञासा की। और फिर चौथा श्लोक हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब अक्रूर जी पहुंचे हस्तिनापुर तो क्या किया उन्होंने, सारे रिश्तेदारों से मिले, फिर उवास कतिचिन मासान, उवास अर्थात रहे वहां पर, कतिचिन मतलब कई, मासान महीने, तो उवास कतिचिन मासान कई महीनों तक वहां पर रहे। वो ऐसे समय हुआ करता था ना कि जब कहीं जाते थे तो कई महीनों तक रह के आते थे, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ते थे, आसमान टूट नहीं पड़ता था। आजकल हम इतने जल्दी में होते हैं, इतने काम हमें होते हैं कि किसी जगह जाते हैं जल्दी से लौट के आना होता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। उद्धव जी गए वृंदावन, 7 महीने रहकर आ गए। अक्रूर जी गए हस्तिनापुर, कई महीने रहकर आ गए। तो राज्यों वृत्त विवित्सया, विवित्सया अर्थात जानने के लिए, राज्ञ वृत्त कि राजा के कार्यों को, धृतराष्ट्र के कार्यों को अच्छी तरह से जान लेने के लिए वो कई महीने वहां पर हस्तिनापुर में रहे। दुष्पजस्य अल्प सारस्य, तो राजा के बारे में कहा गया है कि दुष्प्रजा, दुष्प्रजस्य अर्थात जिनके जो पुत्र थे वो बहुत दुष्ट थे, और इतना ही नहीं अल्पसार, तो धृतराष्ट्र अल्पसार या कमजोर निश्चय के बने, वैसे वो ठीक से कोई निर्णय नहीं ले सकते थे क्योंकि अपने दुष्ट पुत्रों से वो आसक्त हो गए थे, उनके प्रभाव में थे वो। तो खल छंद अनुवर्तिनः, तो खल अर्थात जो खल व्यक्ति होता है ना वो बहुत दुष्ट होता है, तो ऐसे अपने दुष्ट पुत्रों के इच्छाओं का अनुगमन वो करने, अनुवर्ति ना है, उनके पीछे पीछे वो चलने लगे, तो अपने दुष्ट पुत्रों के प्रभाव से धृतराष्ट्र क्या हो गए, अल्पसार हो गए, अर्थात दृढ़ता उनके अंदर रही नहीं, दृढ़ताहीन हो गए वो ऐसे कुसंग से, तो अपने बच्चों का संग भी उनके लिए कुसंग हुआ। तो जैसे उन केवल उनके पुत्र नहीं, साथ साथ में और कर्ण आदि थे, फिर शकुनी भी थे। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कुंती और विदुर दोनों ने बड़े विस्तार में अक्रूर जी को सुनाया कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव, वो किस प्रकार से गलत व्यवहार कर रहे थे पांडवों के साथ में, और वो ऐसे क्यों गलत व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि कौरव पांडवों के सद्गुणों को सहन नहीं कर पाए। तो कुंती के जो पुत्र थे वो हर दृष्टि से कौरवों से श्रेष्ठ थे, वो धर्मपरायण थे, वो शक्तिशाली थे, वो ज़्यादा तेजस्वी थे, वो धनुर्वेद धनुर्विद्या में ज़्यादा प्रवीण थे, शारीरिक बल में भी प्रवीण थे, ज़्यादा श्रेष्ठ थे, शूरवीरता में श्रेष्ठ थे, यहाँ तक कि नम्रता में भी वो आगे श्रेष्ठ थे। इतना होते हुए भी, इतने सद्गुणों से संपन्न होने के बाद भी पांडव बड़े नम्र थे। और इतना ही नहीं, यहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, प्रजा अनुरागम पार्थेषु, प्रजा अनुरागम, प्रजा के हृदय में पांडवों के प्रति अनुराग था, बहुत आसक्ति थी, बहुत प्रेम था प्रजा के मन में पांडवों के प्रति। तो कौरवों के प्रति इस प्रकार का प्रेम प्रजा के हृदय में नहीं था। तो ये सब कुछ देखकर दुर्योधन, दुशासन और उनके अन्य जो भाई थे, उनके लिए ये सब असहनीय हो गया। और इसलिए उन्होंने क्या किया, गरदान आदि अपेशलम, गर अर्थात जहर विष, गरदान आदि मतलब उन्होंने जहर पिलाया पांडवों को, आदि मतलब और भी ऐसे बहुत सारे अपेशलम ऐसे कार्य किए जो कि करने योग्य नहीं थे, जिनको कि करना नहीं चाहिए था उन्हें, फिर भी कृतम च धार्तराष्ट्रैर यद, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को धार्तराष्ट्रैर कहते हैं कौरव, तो उन्होंने ऐसे सारे कार्य कर लिए जो कि करने के लिए उचित नहीं थे। विष वगैरह पिलाया, तो महाभारत में वर्णन आता है कि भीमसेन इतने शक्तिशाली थे कि कभी कभी खेल खेल में ही वो हड्डी पसली कर देते थे सारे कौरवों की, क्योंकि भीमसेन तो बड़े थोड़े मासूम थे, उनको पता नहीं था कि उनके शारीरिक बल के कारण कितनी चोट पहुंच रही है उनके कौरवों के ऊपर। कभी किसी बाल को खींच लेते थे, कभी मुक्का प्रहार करते थे, कभी कुश्ती कर लेते थे, तो चोटें बहुत गहरी चोटें लग जाती थीं। तो ये सब देखकर अनुभव करके कौरवों के हृदय में इतना जलन होने लगा, इतनी घृणा होने लगी भीमसेन और अन्य पांडवों के प्रति, कि दुर्योधन दुशासन आदि ने षड्यंत्र रचाए कई कि किस प्रकार से हम भीमसेन की हत्या कर लें। जब भीमसेन की हत्या हो जाएगी तो फिर पांडव आगे चल के राज्य नहीं कर पाएंगे। वो समझ नहीं पाए थे कि हमारे पिता जो हैं वो क्यों इतना स्नेह दिखा रहे हैं युधिष्ठिर और पांडवों के ऊपर। वैसे हमारा अधिकार है राजगद्दी पर बैठना, तो हमारे पिता ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। तो किसी न किसी तरह से दुर्योधन भीम और अन्य पांडवों को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। पांडवों को वो कांटे के ऊपर, रास्ते के ऊपर कांटे के समान प्रतीत हो रहे थे। तो अपने ऊंचर साम्राज्य की प्राप्ति में ये कांटे बन गए थे, तो उनको उखाड़ना था। तो इस उद्देश्य से धृतराष्ट्र दुर्योधन ने भीमसेन को जहर पिलाया। और कैसे पिलाया, देखिए किस प्रकार का षड्यंत्र रचाया उन्होंने। उन्होंने मनोरंजन के लिए एक बहुत सुंदर स्थान की व्यवस्था कर ली नदी के तट पर। राजकुमार थे, धनवान थे, ऐसे व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और बहुत ही एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया, और उस दावत में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे, और मनोरंजन की और भी तरह तरह के साधन उपलब्ध थे। तो इस प्रकार से वो चले गए यात्रा में उस स्थान पर, और उन्होंने खेल क्रीड़ा की, उन्होंने खूब खाया पिया, और उस समय सारे पांडवों के लिए सोने की व्यवस्था भी की गई थी, ऐश्वर्यशाली स्थान, उधर भीष्म क्षमा कीजिए भीमसेन के भोजन में उन्होंने जहर मिला दिया कौरवों ने। भीमसेन बेचारे, उनको पता नहीं था और वो सो गए, वो गंगा के तट पर ही जहाँ थे वहाँ वहीं पर सो गए, और बाकी पांडव जो हैं वो चले गए वो निवास स्थान में, वहाँ पर जो व्यवस्था दुर्योधन ने की थी। बाद में अकेले एक दुर्योधन आए और उन्होंने धक्का मार दिया भीमसेन को गंगा में, तो भीमसेन गंगा के जल में गिर पड़े और वैसे रस्सी से भी बांध दिया था उनका शरीर, और उधर नीचे जल में जा जा के वो नागलोक तक पहुंच गए। वसुकी भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके पूर्वज थे, इसलिए नागलोक के निवासियों ने उनको मुक्त कर दिया। वसुकी ने उनका स्वागत किया और उनको अमृत भी दिया। वैसे वासुकी के दरबार में आने के पहले जो जहरीले सांप थे उन्होंने भी डस लिया भीम का शरीर, तो उनके जहर से उनके जहर ने क्या किया कि प्रतिकार कर लिया दुर्योधन के जहर को, और इस प्रकार से भीमसेन जहर मुक्त हो गए। और फिर वसुकी ने उनको अमृत का पान करवाया जिसके कारण हजारों हाथियों की शक्ति भीमसेन में आ गई। तो देखिए भगवान के भक्तों के साथ जब हम बुरा करते हैं ना, तो बुरा उनका नहीं होता है, बुरा हमारा ही होता है, और उसमें व्याज सहित वो हमें मिल जाता है। जो बुरा करते हैं वो बुराई व्याज सहित हमारे ऊपर ही बीत जाती है। तो ऐसे ही हुआ, अब भीमसेन की हत्या करना चाहते थे, अब भीमसेन हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आ गए। और जब वापस आ गए 8 दिन के लिए वो अंदर थे, गायब थे, तो यहां पर सभी लोग चिंतित थे। कुंती महारानी की चिंता की क्या कहना, परंतु विदुर जी ने कहा कोई बात नहीं, ऋषियों ने भविष्यवाणी की है कि आपके 5 पुत्रों की दीर्घ आयु होगी, इसलिए भीमसेन अवश्य सुरक्षित है, आप चिंता न करें। तो 8 दिन के बाद वाकई विदुर जी ने जो कहा था वो सही निकला, भीमसेन वापस आ गए चुपचाप अपने घर में। युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए और भीमसेन की कथा सुनी कि क्या बीता था उनके ऊपर, और फिर गोपनीय ढंग से सारे पांडव कुंती महारानी के साथ और विदुर के साथ में बैठे, उनकी एक सभा हुई कि क्या करना चाहिए। सारे पांडवों को इतना क्रोध आ गया था, परंतु विदुर जी ने और कुंती ने कहा कि नहीं, इस बात को गुप्त ही रखो, किसी को बताना नहीं भीमसेन की क्या हुआ है। विदुर ने कहा कि अब बताओगे और जाके दुर्योधन के सामने जाके आक्रमण करोगे कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसे किया, तो दुर्योधन का गुस्सा और द्वेष और भी बढ़ जाएगा, इसलिए चुप रहो, किसी को बताना नहीं कि दुर्योधन ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो इसी प्रकार से हुआ, तो दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ ये सब सुन के, अरे भीमसेन वापस आ गया। तो दोबारा षड्यंत्र रचाया दुर्योधन ने, दोबारा जहर देने का प्रयास किया, लेकिन इस समय जो धृतराष्ट्र के 101 वाले पुत्र थे, जो गांधारी के पुत्र नहीं थे, जो एक दासी के पुत्र थे परंतु धृतराष्ट्र के थे, जिनका नाम था युयुत्सु, जिनके हृदय में पांडवों के प्रति अनुकूल भाव था और जो पांडवों की ओर से आके युद्ध किया, जो उन्होंने युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में, तो युयुत्सु ने आके भीमसेन से कहा कि देखो ऐसे ऐसे इन्होंने किया है, आपके भोजन में इन्होंने विष दोबारा मिला लिया है। तो भीमसेन ने परवाह नहीं की, अब उन्होंने वसुकी द्वारा दिए हुए नागलोक के जो अमृत है उससे उनका शरीर इतना कठोर बन गया था, इतना सुदृढ़ बन गया था कि अब ये जहर वगैरह क्या नुकसान पहुंचा सकता था उनको, तो उन्होंने उस जहर को खा लिया, पचा भी लिया और कुछ नहीं हुआ भीमसेन को। और इसके अतिरिक्त दुर्योधन ने बहुत सारे प्रयास किया उनको मारने के लिए, परंतु उनका बाल भी बका नहीं सके। तो इसलिए यहाँ पर गर दान आदि, तो ये आदि शब्द का प्रयोग किया गया है कि और बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र रचाए दुर्योधन ने, परंतु हर बार असफल हो गए। वैसे तो पांडव श्री कृष्ण के भक्त थे, यद्यपि वो प्रकट लीला में श्री कृष्ण से मिले नहीं थे अब तक, परंतु अंतर्यामी के रूप में कृष्ण तो उनके हृदय में बैठे थे, उनकी रक्षा तो कर ही रहे थे। तो खैर, इस प्रकार से प्रथा आचख्यौ सर्वम एवास्मै प्रथा विदुर एवच। तो पृथु प्रथा और विदुर, इन दोनों ने आचख्यौ मतलब बतलाया एव अस्मै अक्रूर को, बड़े विस्तार में उन्होंने ये सारी बातें बताई। और फिर कुंती महारानी अब याद करने लगी, कुंती महारानी के आंखों में आंसू भर गए और फिर उन्होंने बातें बताना शुरू कर दी। सातवां श्लोक, प्रथा, प्रथा अर्थात कुंती। प्रथा तो भ्रातरम प्राप्तम अक्रूरम उपसृत्यतम। तो प्रथा या कुंती ने क्या किया, अपने भाई का संग जब प्राप्त किया तो उनके पास में गई। उवाच जन्म निलयम स्मरन्ति अश्रु कलेक्षणा। उनके जन्म निलय, अपने जन्म स्थान का, अपने मायके की याद आई कुंती महारानी को। स्मरन्ति जन्म निलयम स्मरन्ति, निलय मतलब निवास स्थान। तो जन्म निलयम स्मरन्ति, तो उन्हें अपने जन्म स्थान का स्मरण आया। और अश्रु कलेक्षणा, उनके आंखों में आंसू भर गए। और उवाच, फिर वो कहने लगी अपने जन्म स्थान को याद करके, क्योंकि उनके जन्म स्थान से ही तो अक्रूर जी आए थे ना, उन जिनको यहाँ भ्रातरम कहते हैं, भाई, परंतु वास्तव में वो भाई नहीं थे अक्रूर जी। कहने के लिए पारिवारिक एक संबंध में भाई के तुल्य थे आयु की दृष्टि से, परंतु वास्तव में कुंती महारानी और अक्रूर जी के बीच में लगभग 8-9 पीढ़ियों का अंतर था। फिर भी आयु में इतना कोई अधिक अंतर नहीं था, इसलिए उनके लिए, कुंती महारानी के लिए ये भाई तुल्य थे, इसलिए उनको यहाँ भ्रातरम कह के बतलाया गया है। शुकदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं, और इसलिए पांडवों के लिए वो चाचा के समान थे। तो फिर इस तरह से कुंती महारानी की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो याद करने लगी अपने जन्म स्थान को। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कुंती महारानी ने किस प्रकार से अपने जन्म स्थान को याद किया, क्या कुंती महारानी ने कृष्ण को भी याद किया या नहीं, उन्होंने और किसको याद किया, और कौन सी बातें उन्होंने याद की अपने जन्म स्थान के बारे में, यदि आपको ये जानना है तो कल शाम को 7 बजे आप इस कथा में उपस्थित रहिए। धन्यवाद। तो भजन गाएं फिर, अभी प्रश्न नहीं है शायद?
नहीं महाराज, कोई प्रश्न नहीं है। तो हाँ, कल के प्रवचन से 2 प्रश्न थे महाराज, वो कुब्जा संबंधित कुछ लेना है या भजन में आगे बढ़ सकते हैं?
हाँ, संक्षेप में छोटे प्रश्न हो तो ले लें।
नंदनंदन प्रभु का एक प्रश्न था कि कुब्जा यदि सत्यभामा जी की विस्तार है वो कंस की सेवा में कैसे पड़ गए?
ये तो एक बाह्य लीला है ना। वैसे भीष्म देव भी तो कौरवों की सेवा में लगे थे ना, दुर्योधन की सेवा तो कर रहे थे। ये भगवान की लीला है। भगवान तरह तरह से, भगवान एक नाट्य लीला करते हैं तो इसमें भूमिकाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे चरित्र होते हैं जिनमें तरह तरह के उनके भक्त शामिल हो जाते हैं। और
एक और प्रश्न श्रीजी पंडित प्रभु का था कि देवर्षि भूतापत श्लोक जो आपने उद्धृत किया था कल, वो किन प्रकार के भक्तों पर लागू होते हैं? क्या वो केवल पूर्ण समर्पित भक्तों पर या कोई भी भक्त पर लागू होते हैं?
सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो जो सर्वात्मना अपने सारे मन से, अपने हृदय से, शरणम शरण्यम भगवान श्री कृष्ण जो शरण्यम है, केवल एकमात्र व्यक्ति जिनका शरण हमें लेना चाहिए, तो ऐसे शरण्यम के हम जब शरण सर्वात्मना अपने पूरे मन से लेते हैं, हृदय पूर्वक शरणागति हमारी होती है भगवान के प्रति, तो ऐसे लोग ऋण मुक्त हो जाते हैं पूरी तरह से। और जिन्होंने सब कुछ त्यागा है परिहृत्य कर्तम, जिनकी सेवा मुकुंद के लिए, परंतु जिस हद तक हम इस शरणागति के रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं, उस हद तक हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। जैसे हमने यदि बैंक से 1 लाख रुपए लिए होंगे, उधार लिए होंगे, और हम थोड़ा थोड़ा कुछ दे रहे हैं, तो हमने या तो सब 10,000 रुपये दिए हैं, पूरा नहीं दिया है, तो 90,000 तक हमारा कर्ज है अभी तक। तो जितने हम शरणागति के रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं, उस मात्रा में हम ऋण मुक्त हैं। परंतु वास्तव में है, यदि हम हृदय से हम भगवान का नाम लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कृष्ण भक्त जो होते हैं वो साधारण कर्मों के अधीन नहीं होते हैं। ऐसे प्रतीत होता है बाह्य कार्यों से कि ये कर्मबद्ध हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से ऐसे भक्त के जीवन में कृपा करते हैं। ठीक है, तो
अभी इस श्लोक में क्या ये बताया जा रहा है कि अन्य कर्मों की आवश्यकता नहीं है, या एक सुझाव दिया जा रहा है कि इनको नहीं करना चाहिए?
नहीं, ये बताया जा रहा है कि जो लोग अपने अन्य वर्णाश्रम धर्म के कर्मों को त्याग कर श्री कृष्ण के शरण में आए हैं, तो उन्हें डरने की बात नहीं है कि हमें ये पंचयज्ञ हमने नहीं किए, हमने तर्पण पिंड आदि पूर्वजों को नहीं दिया, पितरों को नहीं दिया हमने, और प्राणियों की सेवा नहीं की, और देवताओं के लिए हमने अग्निहोत्र आदि नहीं किए, कर्मकांड की क्रियाओं को नहीं किया, इन चीजों के बारे में परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। यह है तात्पर्य इस श्लोक का। तो अभी हम एक गीत गाते हैं, भजन, वृंदावन का गीत है, आप सबने अवश्य सुना है। हरि व्यास देवाचार्य द्वारा विरचित। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे।
जय राधे जय राधे राधे,
जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।
जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।
श्याम गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे
श्याम गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे
रसिक रसीलो छैल छबीलो गुणगर वीलो श्री कृष्ण
रसिक रसीलो छैल छबीलो गुणगर वीलो श्री कृष्ण
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा रास विहारिणी रास विस्तारिणी प्रिय उर धारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा प्राण प्रियारी रूप उज्यारी अति सुकुमारी श्री राधे
प्राण प्रियारी रूप उज्यारी अति सुकुमारी श्री राधे
मैन मनोहर महामुदकर सुंदर वरतर श्री कृष्णा
महामुदकर सुंदर वरतर श्री कृष्णा
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण शोभ सैनी मोभ मैनी कोकिल वैनी श्री राधे
शोभ मोह मैनी कोकिल वैनी श्री राधे
कीरतिवंता कामनिकंता श्री भगवंता श्री कृष्ण
कीरतिवंता कामनिकंता
चंदावदनी कुंदरदनी शोभसदनी श्री राधे परम उदार प्रभा अपार अति सुकुमार श्री कृष्ण
परम उदार प्रभा अपार अति सुकुमार श्री कृष्ण
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे राधे
जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण
जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण
हंसागवनि राजति रवनि क्रीडा कवनि श्री राधे रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण
रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण
कंचन वेली रति रस रेली अति वल बेली श्री राधे
कंचन बेली रति रस रेली अति वल बेली श्री राधे
सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण
सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे
जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण
जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण
रवणि रम्य तरतरतम्य गुण अगम्य श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण
धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण
शक्त्यालादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे अंग अंग तौन सरस सलोन सुभग सुथौन श्री कृष्ण
अंग अंग तौन सरस सलोन सुभग सुथौन श्री कृष्ण
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे
जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण
जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण
राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे
राधा नामिनी गुण अभिरामिनी
हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्ण
हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्ण
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा श्री वृंदावन धाम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल
हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज सभी उपस्थित भक्तों को आज की कथा में उपस्थित होने के लिए।